ये आकाशवाणी दिल्ली है। कांग्रेस दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को होने वाले महापौर और उपमहापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग में इमारत की छत पर अवैध रूप से संचालित 3 कैफे और रेस्तरां सील किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, नए आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में दिल्ली में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कांग्रेस दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को होने वाले महापौर और उपमहापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
श्री अनिल भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया है कि पार्टी के सभी पार्षद महापौर के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची और उपमहापौर के उम्मीदवार रविंद्र भारद्वाज के पक्ष में मतदान करेंगे। श्री भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के हित में आम आदमी पार्टी के महापौर और उपमहापौर चुनाव में उनके उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। गठबंधन को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर कांग्रेस के पार्षद सदन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। राजधानी दिल्ली का 90% क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है, जिसकी सफाई व्यवस्था रखरखाव की जिम्मेदारी निगम में चुनी हुई सरकार की होती है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ी ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं से प्रश्न किया है कि क्या उन्हें अदालतों पर विश्वास नहीं है या फिर उनकी अनाप शनाप आरोप लगाकर अदालतों को भी प्रभावित करने की असंवैधानिक मंशा है। श्री भिदुड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह सहानुभूति का कार्ड खेलने की असफल कोशिश की है वो बताती है कि वे किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष भिदुड़ी ने कहा कि केजरीवाल ने अदालत से इंसुलिन के बारे में अनुरोध किया है और अदालत ने तमाम दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को अदालतों पर भी भरोसा नहीं है और वे अदालतों में दलीलें देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे अदालतें भी प्रभावित हो सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। राजधानी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय जागरूकता अभियान चला रहा है। यह अभियान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और इस दौरान युवा मतदाताओं को शपथ भी दिलाई गई। मेरा वोट मेरी ताकत के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव छठे चरण में 25 मई को होगा। भारतीय लोकतंत्र के लगातार बदल रहे परिदृश्य में भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता के लिए प्रेरक कार्य कर रहा है। आयोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उपयोगी साधन के तौर पर मीडिया और प्रौद्योगिकी को मान्यता दे रहा है। एक रिपोर्ट।
कल्पना कीजिए, लोकतंत्र की लय से स्पंदित एक राष्ट्र जहां हर नागरिक सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। ये दृष्टिकोण निर्वाचन आयोग और मीडिया के विभिन्न माध्यमों के बीच सहयोग से जीवंत होता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो सामुदायिक रेडियो के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व पर जानकारीपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस बीच डिजिटल माध्यम जैसे फेसबुक और ट्विटर वर्चुअल टाउन स्क्वायर के रूप में काम करते हैं। मुंबई महानगर हो या फिर हिमाचल प्रदेश की शांत घाटियां, यात्रियों का स्वागत होर्डिंग और डिजिटल डिस्प्ले द्वारा किया जाता है, जो उनसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति का उपयोग करता है। स्पॉटिफाई पर मनमोहक सॉन्ग प्लेलिस्ट से लेकर गूगल पर अभिनव डिजिटल जागरूकता अभियान तक निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनावी भागीदारी का संदेश जनता के बीच जाए। मीडिया और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से निर्वाचन आयोग न केवल नागरिकों को शिक्षित करता है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। अर्पिता चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया पिछले साल आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए थे। रॉ रेवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिका पर 30 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से संबंधित दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया था। इससे पहले सिसोदिया ने राउस एवेन्यू अदालत से अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली थी, जबकि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। दिल्ली नगर निगम ने करोड़बाग के नारायणा औद्योगिक क्षेत्र के फेज वन में इमारत की छत पर अवैध रूप से संचालित 3 कैफे और रेस्तरां मिसेस मून मिस कैफे, मिसेस टोमाटीना कैफे, मिसेस तांबूला बाय बुहू को सील कर दिया है। ये रेस्तरां अनिवार्य स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर चलाए जा रहे थे। निगम अनधिकृत रूप से चलने वाले रेस्तरां की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उचित लाइसेंस और सुरक्षा संबंधी अनुमति का अभाव न केवल स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करता है बल्कि इन प्रतिष्ठानों में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा से भी समझौता है। इस अवैध रेस्तरां और कैफे को सील कर निगम ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अनुपालन के मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। ये कार्रवाई सभी व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के लिए एक सख्त हिदायत है कि लाइसेंसिंग नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली नगर निगम भविष्य में भी अवैध रूप से संचालित कैफे और रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। डॉ चंद्रचूड़ आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लागू होना दर्शाता है कि देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों ने भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। डॉ चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा कि आपराधिक जांच के मामलों में न्यायपालिका को एआई की मदद से जांच की प्रगति में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं में असमानता का पता लगाने के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नए कानून तभी सफल होंगे जब देश का प्रत्येक नागरिक इन्हें अपनाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 21वीं सदी में नए आपराधिक कानूनों का लागू होना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कानूनों में ऑनलाइन जांच और ई फाइलिंग जैसे विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। दिल्ली नगर निगम ने करोड़बाग में इमारत की छत पर अवैध रूप से संचालित 3 कैफे और रेस्तरां सील किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड ने कहा, नए आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में दिल्ली में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप और उसकी वेबसाइट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में दिल्ली सहित मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस दौरान बैंक में जमा 2,70,00,000 रूपये की धनराशि के लेन देन पर रोक लगा दी गई और कई आपत्तिजनक दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 35 करोड़ रूपये की लागत की क्रिप्टो करेंसी, बैंक जमा राशि और सोने के सिक्कों को भी जब्त किया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इस दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई तक विशेष रेलगाड़ियों के 542 फेरे संचालित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल से हो चुकी है। उत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से देशभर के प्रमुख गंतव्यों को जैसे पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, जोगबनी, सहरसा, जयनगर, दरभंगा, गोरखपुर, रक्सौल, वाराणसी, गया, श्री वैष्णो देवी कटरा को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। उत्तर रेलवे ने अनारक्षित कोचों में यात्रियों के व्यवस्थित प्रवेश के लिए आरपीएफ कर्मचारियों की देखरेख में टर्मिनल स्टेशनों पर कतार बनाकर भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय सुनिश्चित किए हैं। प्लेटफार्मों पर भीड़ को कम करने के लिए कवर टेंटेस, लाइटिंग, एयर कूलर, पंखे, पानी के नल, मोबाइल टॉयलेट, ब्लॉक बुकिंग काउंटर और नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर पूछताछ काउंटर आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। रेल अधिकारियों के अनुसार स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें डॉग स्क्वाड की तैनाती, सभी प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, सभी प्रवेश द्वारों पर मैनिंग मेगा माइक शामिल हैं। नई दिल्ली में 9 बैगेज स्कैनर मशीनें और आनंद विहार टर्मिनल में 2 बैगेज स्कैनर मशीनें कार्य कर रही हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल में अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इस वर्ष फरवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 15,48,000 नए सदस्य जुड़े। इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। कुल नए सदस्यों का ये 56.36% है। इससे जाहिर होता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश लोग युवा हैं। भारत ने कल फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली किश्त भेजी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहली किश्त भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से भेजी गई। फिलीपींस हॉरिजन 2 के अंतर्गत संशोधित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के तहत प्राप्त कर रहा है। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ $3,750,00,000 का सौदा तय किया था। इसके अंतर्गत भारत और रूस के बीच संयुक्त उपक्रम मिसाइल के लिए पहले निर्यात ग्राहक को शोर बेस्ड 3 बैटरियां और ब्रह्मोस की एंटीशिप के नए स्वरूप भेजे थे। ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्राइनिया का संयुक्त उपक्रम है और मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्क्वा नदियों के नाम से लिया गया है। राजधानी में आज दिनभर धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका भी व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारतीय महिला कुश्ती में भाग लेने वाली विनेश फोगाट आज किर्गिस्तान के बिश्केक में फाइनल में पहुंच गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को होने वाले महापौर उप महापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग में इमारत की छत पर अवैध रूप से संचालित 3 कैफे और रेस्तरां सील किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, नए आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।